તારીખ 5/10/1994 શ્રી સમયસર ગાથા 295 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 11 મૂળ કેસેટમાં ખૂબ જ ડિસ્ટર્બન્સ છે.
આત્મા તો ચૈતન્ય લક્ષણ છે, પહેચાનતા और सिद्धात्मा की जिसको पहचान आती है उनको सिद्धात्मा का दर्जा क्या है, उसका स्टेटस क्या है, तो कितना महत्वपूर्ण पदार्थ है इसका पता चलता है। पर इसके आगे पुण्य आदि कुछ भी हो तो कुछ है ही नहीं ऐसा मुझे लगता है। तो जिसको अपनी पहचान नहीं हुई, अपने सिद्धात्मा की पहचान नहीं हुई, किसी को राग से अनादि का व्यामोह है कि ये राग नहीं तो वो राग, वो राग नहीं तो वो राग, कुछ न कुछ प्रकार का संलाप करता है बहुत हमारे पावर जो उपाय के एक कण को भी विपाद समझता है, जानता है, उसने सिद्धात्मा को नहीं जाना और नहीं पहचाना। अगर जिसको पहचान आती है उसको ऐसा कोई हो सकता नहीं है। जो सिद्धात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, यानी कहते हैं कि इंद्रादी की संपदा संपदा मेरे इसके जो वैभव है क्योंकि उनको कैसे लगते हैं वैसा वो कीचड़ में कीचड़ होता है, कीचड़ के समूह में जो कीचड़ होता है चढ़ा हुआ मुर्दा जैसा लगता है और कुछ नहीं लगता। इस तरह से फिर पहचान कोई बुरी चीज होती है जिससे पूरा मूल्यांकन जो है जगत के सभी पदार्थ का पूरा मूल्यांकन बदल जाता है। जिसको समझ के उपाधि का है कहने की आवश्यकता नहीं कि उसको जड़ पदार्थ की नुकसान गई नहीं, जो अनादि से है वो गई नहीं, उसका मूल्यांकन उसमें बदला नहीं है, तो बात शुरू करने की जरूरत इतनी सर्वथा सब दिया है। सर्वथा ये क्षेत्रज्ञ आत्मबंधव भी बहुत अच्छा है। आत्मबंधव ही तावत नियत स्वलक्षण विज्ञान सर्वथा क्षेत्रियों आत्मा और ब्रह्म को अपने स्वलक्षण के विज्ञान के द्वारा विज्ञान समझ लिया है। सर्वथा सर्वथा क्षेत्र एक भी अंश को अपने में एक दूसरे में मिलाना नहीं, एक चैतन्य है एक जड़ है, चैतन्य में जड़ की मिलावट नहीं करते।
धारणा तो बड़े हो गए,
धारणा क्या हो गए बोले, क्या बोले धारणा हो गए
राग धारणा हो सकता है
राग
तो उपाधि माने
उपाधेय का है कि जीव को व्यामोह है और कुछ व्यामोह से संसार परिग्रह है। उसको भिन्न करना चाहिए रागादिक जिसका लक्षण है ऐसे समस्त बंधु को तो छोड़ना चाहिए। रागादिक जिसका लक्षण है जो तुम्हें पहले छोड़ने की बात पहले गया है कि राग रागादिक जिसका लक्षण है ऐसे समस्त बंधुओं को छोड़ना चाहिए, राग से तो हटना चाहिए विज्ञान की विधि की बात कर रही है। तो विधि का जो विधि और विशेष दोनों साथ में आएंगे विधि विशेष एक दूसरे के साथ अपेक्षित है तो राग को तो छोड़ना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा कहा कि अब तक राग के साथ एकत्र तो होकर के चिपके हुए थे इसलिए उसको छोड़े नहीं। तो जानना भी यथार्थ रहा कि राग के एकत्व को मिटाया नहीं, राग के एकत्व को छोड़ा नहीं, तो जाना भी क्या राग को, राग को जाना भी नहीं। मैंने राग को अपने रूप अनुभव किया है, जाना को नहीं, अपने रूप अनुभव किया है। कैसे सिद्धि कह सकें उसको बिता दिए जैसे कैसे भी, यानी अपने पूरे पुरुषार्थ से पूरे उद्यम से उसको बिता दिए। ऐसे ज्ञान की क्रिया का परिणाम होना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने से जानकारी हो जाए, इससे कोई आत्मशांति मिलने वाली नहीं है, परिणाम करने से शांति मिलेगी। यानी ऐसा कहते हैं कि राग के साथ एकत्व जो करता है आत्मा तो उसको कितनी अशांति होती है, इतनी इतना दुख और आतंकता होता है, कितने कहेंगे हमको तो कोई दुख नहीं है, हमारे तो आराम है, खाते हैं पीते हैं और आराम से जाते हैं। तो फिर सब संख्या आवे और होवे, दुखिया दास सभी जावे और होवे, किसी समय जीव को अनंत दुख है, लेकिन सुख दुख की कोई सही पहचान जीव को और तो इससे इसका आदत बन गया है। जो भी चीज जिस हालत में रहता है उस हालत में रहने का उसका आदत हो जाता है, तो उतना आदत ही हो जाता है तो उनको वहां का सुख दुख का कोई लगता नहीं है, उनको सामान्य हो जाता है। पर जीव को अनंत दुख होने के बावजूद भी अनंत दुख सहन करने की शक्ति उसकी ताकत में बहुत है, बड़ी है, उसकी सहन शक्ति तो कम नहीं है, बहुत है, तो करता है ना दुख होता है। अब कोई दुख से जो निकलना चाहता है उनके लिए आता है सारा समय काल, उनके लिए बनाया है, इसके लिए बनाया है कि जिसको हर विकल्प में दुख ही दुख लगे उनके लिए समझदार है। जहां तक विकल्प में दुख नहीं लगता है या कुछ विकल्प में दुख लगे और कुछ विकल्प में दुख नहीं लगे ऐसा होता है, उनको ये समझदार की बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने ज्ञान के पर्याय को अंदर में कैसे ले जाएगा, तो दुख को दुख से छूटने के लिए वो कैसे प्रयास करेगा, तो प्रयास उसको कैसे होगा, तो वो नहीं होता, वो नहीं होता, कैसे इसलिए कहते हैं कि राधादूत जिसके लक्षण है ऐसे समस्त बंधकों को छोड़ना चाहिए कि उनके साथ भाषा है। राधादूत को जानते ही उसमें दुख देखते ही उसे हटने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हाँ वहाँ तक नहीं जाएगा, प्रज्ञा श्रेणी से ही भिन्न हो सकता है, उसके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। तथा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धात्मा को ही ग्रहण करना चाहिए। उपयोग जिसका लक्षण है ज्ञान, उपयोग ज्ञान का व्यापार, ज्ञान सामान्य लेना, उपयोग में अनेक प्रकार के नेय प्रतिबिंबित होते हैं, तो अनेक प्रकार जो ज्ञान का अनेक रूप होता है ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। ज्ञान सामान्य क्यों लेना चाहिए और व्यापार ज्ञान क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तो आत्मा की यह पहचान कराने का प्रकरण चल रहा है। आत्मा एक रूप है तो उसकी पहचान होने के लिए ज्ञान की भी एक रूपता चाहिए। ज्ञान की एक रूपता, एक रूप आत्मा के स्वरूप के साथ सुसंगत है, पर वही ज्ञान की अनेक रूपता आत्मा के एक रूप स्वरूप के साथ भी संगत है, सुसंगत नहीं है। इसलिए यह उपयोग शब्द से ज्ञान सामान्य लेना, उपयोग शब्द से ज्ञान विशेष मत लेना। ज्ञान सामान्य है वो आत्मभाव रूप है, आत्मभाव है वो ज्ञान सामान्य रूप है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए नियत स्व लक्षण से अलग करने के लिए उसको ज्ञान से उपयोग से वेदन से समझाया जाता है, लेकिन वही आत्मभाव है हमारे परिणम में स्थित है। हमारे सबों के परिणम में एक आत्मभाव चलता है और एक अन्य भाव चलता है, जिसको यह राजा दिखा रहा है। आत्मभाव को आत्मभाव के रूप में हम महसूस करें और अन्य भाव को अन्य भाव के रूप में जान करके उसको उपेक्षा करें, उसको छोड़े, उसका रूप मिटा दें, तो यही विधि निश्चित है। इतना भेद ज्ञान परिणमित होने से मोक्ष का मार्ग मिलता है, सुखोपयोग उत्पन्न होता है, मोक्ष का मार्ग मिलता है, जिसका फल मोक्ष है, मोक्ष का अधिकार चलता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग का साधन किसकी चर्चा कर रहे हैं? स्वभाव उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुभात्मा को ही ग्रहण करना, तो लक्षण और लक्ष्य है तो अभिन्न है, समझाने के तौर से उसको भिन्न भिन्न कहा, लेकिन अनुभव में आने से उसकी भिन्नता मालूम नहीं पड़ती। पहले लक्षण का मेल गौण हो जाता है और लक्ष्य के साथ मुख्यतः मुख्य रूप से अपना अनुभव चालू हो जाता है। इसको बेहद ध्यान करना, अपने रूप अनुभव करना चाहिए। वास्तव में यही आत्मा और बंध के विभाग करने का प्रयोजन है। वास्तव में यही आत्मा और बंध के विभाग करने का प्रयोजन है। प्रयोजन विद्या विधि विशेषता है। आत्मा और बंध को भिन्न करने का प्रयोजन क्या, प्रयोजन से बात करें तो इसका प्रयोजन क्या, प्रयोजन विधि निषेध करने का है। बंध का निषेध करो और आत्मा को प्रेम के रूप में अनुभव करो। इसको ग्रहण करना चाहिए। आत्मभाव और आत्मविकल्प, आत्मविकल्प है तो अन्य भाव रूप है। जबकि आत्मभाव है वो स्वयं रूप है, स्वभाव रूप है। उतना बड़ा अंतर है। आत्मविकल्प और आत्मभाव दोनों में अंतर क्या है, वही प्रश्न है ना। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आत्मविकल्प है तो आत्मभाव नहीं है। आत्मभाव है तो चैतन्य है, पर आत्मविकल्प है तो जड़ है। कितना बड़ा अंतर है, जड़ चैतन्य जितना बड़ा अंतर है। तो फिर दूसरा दूसरे दूसरे पदार्थ का विकल्प को विकल्प क्या कहना, कथा क्या कहने। जब आत्मविकल्प ही जड़ है तो फिर दूसरे पदार्थ के विकल्प की कथा क्या करना, उसके बाद क्या करना, तो उसके बाद करने का तो कोई प्रसंग इस पर रहता नहीं है। कहने के आने के समझे जड़ है विकल्प में ज्ञान और राग का विशेष प्राप्त होता है। विकार विकल्प तो इसमें जो राग है वो तो जड़ है, लेकिन उसके साथ जो ज्ञान विशेष है वो भी छेदन करने योग्य है, इसलिए वो भी जड़ है। राग का छेद करने की बात आई ना, चंद्र गाथा नहीं करता। उसी प्रकार आत्मा भी है मिला, उसी प्रकार आत्मा भी स्वग्रह के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर यहाँ क्या विषय चला है। स्वग्रह के संयोग का व्यवच्छेद में परग्रह का प्रतिबिंब से होने वाला ज्ञान विशेष है, तो परग्रह का संयोग वाला ज्ञान है उसका व्यवच्छेद करके छेद करके व्यवच्छेद मेरे अच्छी तरह से उसको छेद करके, जैसे राजा जी का छेद ज्ञान छेद करना, जैसे केवल आत्मा का ही है ये ज्ञान विकल्पात्मक है। तो विकल्पात्मक ज्ञान ज्ञान नहीं है तो जड़ है। क्या है, ज्ञान नहीं है किंतु जड़ है। जैसे राजाधिक जड़ है वैसा ही ये ज्ञान विशेष है। राजाधिक ग्रहण करना नहीं, राजाधिक को छेद करना छोड़ना, तो यहाँ छेद करने की बात आई, यहाँ व्यवच्छेद करने की बात आई, यहाँ से मैंने अच्छी तरह से था क्योंकि उसके ज्ञान विशेष भाव से ही अनेक प्रकार की विलुप्ता आ गई है। इसके बिना एक विलुप्ता आ सकती नहीं है, तो उसको व्यवच्छेद कर देना जिससे अन्य पदार्थ की विलुप्ता होवे ही नहीं, और केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर, केवल आत्मा कहो, केवल आत्म स्वभाव कहो, केवल ज्ञान 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 समझ को जो अनुभव में आता है उसका अनुभव किए जाने पर क्या मालूम पड़ेगा कौन सा अनुभव होगा, अनुभव कौन सा होगा। पर्वत है एक विज्ञान घनता के कारण, चारों ओर से ज्ञान से विज्ञान घन रूप लगा लग भरा हुआ हमारा आत्मा है, ऐसा ज्ञान रूप से स्वाद में आता है, आत्मा विज्ञान घन रूप स्वाद में आता है। सर्वतः एक विज्ञान घन रूपता के कारण ज्ञान रूप के स्वाद में बहुत बहुत अनंत अनंत बेहद ज्ञान भरा है, इसलिए अकेला ज्ञान रूप से स्वाद में आ रहा है, मेरा कुछ स्थान के कारण हो रहा है। तो बात मान लिया है ज्ञान विशेष का जो उसके द्वारा बात बन गया है। बंद माने संबंध, क्या बंद माने संबंध, संबंध कहाँ से होता है, ज्ञान विशेष के एक पहलू जहाँ से वो संबंध करता है, ज्ञान आत्मा परब्रह्म से संबंध कहाँ से करता है, कि जो ज्ञान विशेष है उसमें जो प्रतिबिंब परब्रह्म होता है तो वहां से वो परब्रह्म से संबंध कर लेता है, तो मूल में उसको कौन करो उसका भी उसको उसको प्रबंध कर दो, तो ज्ञान सामान्य को आविर्भाव करो, ज्ञानाभ्यास की विधि है, तो ज्ञान का अभ्यास की विधि किसको है,
ज्ञान का सारा व्यापार विद्या,
ज्ञान का व्यापार तो इसका रुकता नहीं है, विरोध से लेकर हित पद तक ये ज्ञान का व्यापार तो चला ही रहता है, लेकिन ज्ञान का व्यापार करने का प्रकार जो है तो प्रकारांतर होकर के बदल जाता है, ज्ञान का व्यापार नहीं सुनता है, ज्ञान का व्यापार मिलता नहीं, उसका अभाव नहीं होता, लेकिन ज्ञान करने की संख्या जो तरीका है वो नहीं बदलता है। सामान्य दृष्टांत ले लो, कोई कहेंगे तो किताब को जानते हैं, क्या चीज है, एक पुस्तक है, किताब है, जानने का तरीका कौन सा है ये सवाल है, किताब को जानते हैं वो बात नहीं, किस तरीका से जानते हैं सवाल है। ठीक, तो ये तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव में आकर के के अवलंबन से नेगित होकर के जानते हैं, तो हमारा जानने का तरीका दुखदायक होगा, दुखदायक साबित होगा, और हम ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करके अगर इसको गौण रूप से उसका ज्ञान आ जाता है तो इससे हमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। जानने का तरीका अलग अलग, किताब जानने में आई तो किताब का ज्ञान का प्रतिबिंब हुआ, तो दो तरीके से परिणाम होता है, एक ज्ञान के अवलंबन से और एक ज्ञान के अवलंबन से। जानना तो जानना है, लेकिन उसका दो प्रकार है, ये तो जानने वक्त ज्ञ का अवलंबन हुआ या ज्ञान का अवलंबन हुआ, देख लीजिए। अगर ज्ञान का अवलंबन नहीं रहा तो ज्ञ का अवलंबन करना जैसे पतन ही हो ही रहा है, चाहे समझ में आए चाहे समझ में नहीं आए तो हो ही रहा है। आपत्ति नहीं है, ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब आ जाए ज्ञान की शुद्धता से स्वच्छता के कारण से, उसमें ज्ञान को कोई आपत्ति नहीं आती, इससे कोई अशुद्धता नहीं। ज्ञेय शुद्ध अशुद्धता ज्ञान में नहीं हो सकती। सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत है ये, समर्थ में समर्थ दृष्टांत केवल ज्ञान का है कि केवल ज्ञान में लोगों लोग तीन साल समेत प्रतिबिंबित हो जाता है, कोई ज्ञेय ग्रह शुद्धता ज्ञान में नहीं आती। जगत में होने वाले सभी कार्य जिसको हम अच्छे से अच्छा करें पूरे से सभी का केवल ज्ञान में तो सभी के लाभ गलत है, सभी के परिणाम गलत है, लेकिन किसी भी प्रकार की विशुद्धता केवल ज्ञान में आती दूसरों का बिना विकल्प दूसरे का है। बाहर में कार पार्किंग होता है, एक तरफ से दो गाड़ी होती है, नंबर प्लेट पर नजर जाती है तो अपनी है या पराई है, इसका विकल्प नहीं करना पड़ता है। ज्ञान बिना विकल्प ज्ञान हो जाता है। नंबर प्लेट देख करके ये अपना है ऐसा ज्ञान में आ जाता है कि अपनी चीज है क्या अपनी नहीं है, विज्ञान होता कि नहीं होता है, क्यों निश्चय कर लिया है पहले एक अपना एक पराया, ऐसे पहले पहचान के काल से निश्चय होता है जब क्या शब्द का प्रयोग किया है उनको करा मिला। जैसे स्वयं मित्र का शरीर उसमें विधि वाला आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य ने इसमें निश्चय दिया है, मात्र ये आत्मा है ऐसा निश्चय करना चाहिए। जैसे 418 पन्ना में नीचे की पंक्ति है तो आखिर की पंक्ति इन मात्र ही आत्मा है ऐसा निश्चय करना चाहिए, तो निश्चय के आधार से अपना पराया का ज्ञान हो जाता है। पहले निश्चय हो गया है कि ये सब चीज हमारे है तो देखते ही उसमें अपनापन दिखने में आता है, और दूसरी जो चीज है देखते ही उसमें अपनापन नहीं है तो बिना विकल्प ज्ञान हो जाता है। ऐसे ज्ञान हुआ तो उसको मेघ नायक शंकर जो बोला है जो उसने बोला 31 गाथा एक उसमें मेघ नायक शंकर जो हुआ मैंने मेघ से ज्ञान में अभेदता कर लिया, अभेदता कर दिया, बहुत बड़ा अंतर हो गया। और जब ज्ञान के अवलंबन से ज्ञानाकार ज्ञान के आविर्भाव में उस किताब को जाना, उस किताब को पर तो पर उसमें जाना, पर तो पर उनमें जानने से हमको कोई रस आने वाला नहीं है। रस कहाँ आता है, रस के फैक्टर को देखिए, जहाँ अपनत्व होता है वहाँ रस आता है, जहाँ अपनत्व नहीं होता वहाँ रस नहीं आता। तो अपना अवलंबन से अपने में अपनत्व रहेगा, पर के साथ अपनत्व नहीं रहेगा, बात खत्म। परमात्मा का वर्णन कैसे आता है, स्वरूप का वर्णन कहिए, भगवान कैसे है, तो जो निरशेष अंतर्मुख उपयोग में स्थिर हुए हैं, कैसे है, जिनका उपयोग अंतर्मुख है तो कैसे अंतर्मुख है, तो कुछ अवशेष ऐसा नहीं है कि जो बाहर हो उपयोग, निरवशेष अंतर्मुख है, बाकी नहीं रहा उपयोग में, एक उसमें बाकी नहीं रहा जो बाहर हो, ऐसे परिपूर्ण अंतर्मुख होने पर भी उसके ज्ञान में ये अनंत भी गलत है तो उसमें कोई तकलीफ होती जानना पहचानना बहुत मुश्किल बात है। उनके दृष्टान देते थे तब उसमें चिंतन में से कई बातें निकालते थे, मेरी तो ऐसे निकालते थे कि अमावस्या के रात हो और सरोवर का पानी शांत हो, निर्मल हो, निर्मल पानी में नीचे जो रेत हो पत्थर हो दिखाई देता है, क्या निर्मल पानी होने से पानी के नीचे तलवा में जो पत्थर है रेत है रंग जो रंगी पड़ी हो सब दिखाई देते हैं, और उसमें अमावस्या के रात के कारण जो भी आकाश में तारे हैं इसके प्रतिबिंब जो है वो भी दिखाई देते हैं, क्या तो हाथ में क्या क्या जाना, पानी को जाना, पानी के नीचे पत्थर है उसको जाना, या ताराओं पे जाना, ताराओं पे उसको जाना, पानी को भी जाना, पानी के नीचे जो भी रेत पत्थर वगैरह उसको भी जाना, और पानी में जो ताराओं के प्रतिबिंब है उसको भी जाना, अब हम देख सकते हो अच्छी तरह समझ सकते हो तो पानी और पानी के नीचे जो चीज है तो उसके सम्मुख होकर के जाना, लेकिन ताराओं को हमने ताराओं के सम्मुख होकर के नहीं जाना, विमुख होकर के जाना है, तो जानने का तरीका समझ गया कि क्या होता है केवल ज्ञान में, तो केवल ज्ञान में अपने स्वरूप के तलवे में जाते हैं, तो भीतर में जाते हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब आया वो भी उसमें झलकते हैं, उसका भी पता चल जाता है, कुछ फर्क है केवल ज्ञान में, पानी में तारा दिखने में आते हैं उस प्रकार केवल ज्ञान में पूरा जगत दिखने आता है, आता है समझ में कुछ अंश है पूरी हो गई तो उसमें प्रतिदिन भी पूरा का पूरा गिरफ्तार आ जाता है, हमारे शरीर प्रति दो प्रकार की है, एक उपयोगात्मक और एक लक्षात्मक, जब उपयोग अंतर्मुख होता है तब उसमें अन्य पदार्थ का उपयोग नहीं हो सकता, सदमस्त की स्थिति अनिवार्य रूप से ऐसी है कि उसका उपयोग एक साथ दो जगह नहीं होता, ज्ञानी का भी उपयोग बार होता है तो उपयोग अंदर नहीं होता है, और उपयोग अंदर होता है तो उपयोग बाहर नहीं होता है, जैसे अज्ञानी का भी उपयोग बाहर होता है तो उपयोग अंदर नहीं होता है, और अज्ञानी का उपयोग कभी अंदर होता नहीं, परिस्थिति है। पहले का दो उपयोग होता है, तो जो उपयोग कहाँ होता है तो हर एक प्रकार के देव हो ज्ञान में बने तो वो ज्ञान विशेष है, क्रियाकार ज्ञान है। उस वक्त इसी ज्ञान का एक प्रधान परिणति क्या, एक मुख्य परिणति जो लब्धात्मक है चोटियों को बेकार बेकार कर देती है, क्या जिसमें दूसरे के जल के उपयोग को वो बेकार करती है। कितना ज्ञानाकार ज्ञान का प्रधान यानी मुक्त परिणाम ज्ञानी को वर्तता है, कि ज्ञानी का अंतरण सही सच्चा स्वरूप है। यहाँ से ज्ञानी कहता ना जाता है, ये बात
है। ज्ञानाकार ज्ञान का ज्ञान हो रहा है
इसलिए तो कहेंगे वो बेकार है। बेकार का मतलब क्या है, रस नहीं आता है, उपयोग बाहर जाता है लेकिन रुखापन रहता है, कहीं भी रस नहीं आता है। तो वो इतनी चंचलता है तो कुछ न कुछ उसमें राग की मलिनता को पैदा करते हैं। क्या है राग रूप मलिनता पैदा होने का, उत्पन्न होने का दो कारण है, एक तो परमेश्वर का अवलंबन लेना, एकत्र कर लेना वो है, और एक चंचलता से उपयोग का स्थान बदल करके अपर स्थान में जाना, ये भी चंचलता है। और यह चंचलता भी कुछ अंश में जघन्य अंश में थोड़े अंश में भी अहिंसा को उत्पन्न कर देती है। इसलिए यानी ज्ञान ध्यान में रह करके चंचलता को छोड़ करके पूरे ज्ञान को उत्पन्न करने लगते हैं। अपना उपयोग बाहर जाता है तो ज्यादा खेल होता है, ज्ञानी को कुछ कम मात्रा में हो सकता है, ज्ञानी को मुमुक्ष को थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए कहते हैं कभी ज्ञानी मनुष्य का वैराग्य ज्ञानी से भी बढ़कर दिखता है। कभी कभी ज्ञानी में तो बहुत सी बातें फसाई है, तो फसा करके ढीम हुए अंदर में, तो उसके बाहर में उतनी एक्टिविटी नहीं है जिसे, जब तो वो आगे है तो पीछे नहीं है, फिर भी कुछ बातें फसाई है, बहुत सी बातें उस लाइन में तो इतने गए। मनुष्य का ऐसा होता है ज्ञानी के प्रारंभ में और बात है और ज्ञानी के कुछ काल में जब तक पचता है तो फिर और और बात होती है, शुरुआत होती है उतना उछलता है उतना उछलता है तो ज्ञानी के भी उछल कुछ गिरने में आती है, फिर बाद में ज्ञानी के उछल कुछ गिरने में बढ़ जाती है। कई प्रकार है बात नहीं है, केवल ज्ञान से बात खत्म हो जाती है। उसे कोई साइड नहीं रहते, वो जो साधक अवस्था में भूमि में किसी भी पर्याय में चाहे जितना विकास हुआ हो, चाहे जितना प्रसाद प्रकट किया हो, चाहे जितना शुद्ध आनंद का अनुभव आने लगा हो, कहीं भी संतुष्ट होने का प्रकार साधक को हो सकता है? संतुष्ट हुआ यही इसका बाधक प्रणाम है, तो ये तो हमारे सिद्धांत में ही है। होगा तो आगे बढ़ेगा, यदि नहीं होगा तो यहाँ से हटेगा कैसे, तो आगे बढ़ेगा कैसे? या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, तो कुछ परिणाम जिनकी चाल है, चाल है दिशा दो ही है, तो एक दिशा में तो आगे बढ़ ही रहा है, या तो अपने पॉजिटिव साइड में या अपने नेगेटिव साइड में, तो भाई इसलिए अवलोकन करके, अपना अंतर अवलोकन करके अच्छी तरह समझ ले के हमारे परिणाम की चाल कौन से दिशा में जा रहे हैं, तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। शिष्य ने प्रश्न किया था कि आत्मा और बंध को विभाग करके क्या करना चाहिए, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया था, उसका यह उत्तर दिया है इस गाथा सूत्र में आचार्य महाराज ने, इसका उत्तर दिया है कि बंध का तो त्याग करना और शुद्ध आत्मा का ग्रहण किया है। आत्मा और बंध को प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण तो किया, परंतु आत्मा को किसके द्वारा ग्रहण किया जाए? विषय को संक्षेप करके विषय को स्पष्ट करते हैं, प्रज्ञा के द्वारा बंध को दूर तो कर दिया, छेदन तो कर दिया, लेकिन आत्मा को ग्रहण कैसे करे? इसमें प्रज्ञा से ग्रहण करे कि प्रज्ञा से ग्रहण करे? तो प्रज्ञा से जो गाथा जो छंद में मिलती है उसी पर से आगे की जो 97 गाथा 99 गाथा से प्रज्ञा के ग्रहण करने की बात आई है, इसलिए यहाँ प्रज्ञा से कर दिया है सभी को आचार जी और इतना हमारा ग्रंथ है नई सत्र जो बड़ा नई क्षेत्र ग्रंथ है, दो नए क्षेत्र के ग्रंथ है हमारे यहाँ, तो बड़ा है उसके रचन का आचार्य माइल भाई करके उसमें संवेदन से आत्मा को ग्रहण करने की 10 गाथाएं हैं, वेदन से आत्मा को ग्रहण करने का प्रज्ञा शब्द दिया है, तो हम आचार्य को बात करें के कह रहे हैं, तो वहां थोड़ा नए का अधिकार है वेदन को दिया 10 गाथाएं नहीं देखता, इस तरह से आत्मा को किसके ग्रहण करना इस प्रश्न से तथा उसके उत्तर की गाथा कहते हैं। पहले गाथा में प्रश्न दे रखा है और इसका उत्तर भी दिया है, आदर्श गाथा में उसको पता भी पाक दिया, इन दोनों बात करी है। तुम गाथा का आत्मदूर करके साधे करके उसके साथ करके समाप्त करेंगे।
Yeah.